आज के इस रविवारीय सत्संग कार्यक्रम में आए हुए सभी भक्तों का और अतिथियों का हार्दिक स्वागत। मैं सभी भक्तों से और अतिथियों से विनती करता हूं कि वे प्रवचन के लिए बैठ जाए, व्यासासन की तरफ मुख कर बैठ सकते हैं। तो आज हमें प्रवचन देने के लिए उपस्थित है श्रीमान लक्ष्मण प्राण प्रभु। प्रभु जी का परिचय कुछ इस प्रकार, प्रभु जी ने अपना सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री कंप्लीट किया है। पिछले लगभग 23 साल से वे इस्कॉन संस्था से जुड़े हुए हैं। श्री श्री राधा कुंज विहारी मंदिर, जो कि इस्कॉन पुणे में स्थित है, वहां से वे कनेक्टेड है। वहां पर वे काउंसिलर की सेवा भी निभाते हैं। उनका घर एक प्रकार का इस्कॉन मंदिर ही है। वहां पर अनेकों आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं और बहुत से भक्त भी बने हैं। पिछले 2 साल से प्रभु जी गोवर्धन इको विलेज गालतरे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में सेवा प्रदान कर रहे हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु जी आज हमें प्रवचन देने के लिए उपस्थित है। प्रभु जी के प्रवचन का विषय है कृष्ण प्रसाद की महिमा। तो आइए प्रभु जी का प्रवचन ध्यान पूर्वक सुनते हैं और हम भी इस प्रवचन का आनंद लेते हैं। तो प्रभु जी का स्वागत करते हैं पारंपरिक रूप से 3 बार हरि बोल बोलते हुए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मैं सभी अतिथियों से और भक्तों से विनती करता हूं कि वे प्रवचन में बैठ जाए। माताएं पीछे बैठ सकती है, पुरुष आगे बैठ सकते हैं। हरे कृष्णा।
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Kunj Bihari Radha Vrindavan Bihari Radha Vrindavan Bihari Radhe Jaya Radha Vrindavan Bihari Radha Vrindavan Bihari Radha Vrindavan Bihari Radhe जय राधा मदन मोहन ललिता देवी, राधा मदन मोहन ललिता देवी। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव।
हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम एक चर्चा के लिए श्लोक चुना है, भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 13। तो श्लोक मैं दोहराऊंगा, आपको सब पीछे दोहराना है। यज्ञ शिष्टासि न संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिष भुजन्ते ते त्वघं पापा हि पचन्ते आत्मकारणात्। यज्ञ शिष्टासि न संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुजन्ते ते त्वघं पापा हि पचन्ते आत्मकारणात्। यज्ञ शिष्टासि न संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुजन्ते ते त्वघं पापा हि पचन्ते आत्मकारणात्। यज्ञ शिष्टासि न संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषम् भुजन्ते ते त्वघं पापा हि पचन्ते आत्मकारणात्। अनुवाद। भगवान के सभी भक्त, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तात्पर्य, भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव कृष्ण प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5.38 में कहा गया है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान श्री गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुकुंद के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त प्रत्यक प्रत्यक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर है अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस प्रकार सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम्। श्री राधा कृष्ण पाद सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांच नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय पंचाकल्प तरुपेश कृपा सिंधु बेवच पतितना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सभी भक्तों का इस रविवार सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है गोवर्धनी कॉलेज में। तो अभी हमने ये जो चर्चा का विषय चुना है प्रसाद के बारे में, तो इसका थोड़ा हम श्रवण करेंगे भक्ति के साथ, ताकि हमारी जो श्रद्धा है प्रसाद में बढ़े। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि हमारा जो भक्ति में जो श्रद्धा है तो दो बातों से बढ़ता है। एक है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, चंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, और दूसरा है प्रसाद, भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करना बहुत प्रेम और भक्ति के साथ। और रूप गोस्वामी ने भी भक्ति रसामृत सिंधु में बोला कि हमारे जो इंद्रिय है, पांच कर्म इंद्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, तो पांच ज्ञानेन्द्रियों में से जीवा ये डबल रोल का काम करती है। उसको दो कार्य है, एक है बोलना और दूसरा है अपना भोजन ग्रहण करती है। तो उसमें से अगर सिर्फ हम जीवा को नियंत्रित करते हैं, सिर्फ एक ही इंद्रिय को, तो बाकी सभी इंद्रिय खुद ब खुद अपने नियंत्रण में आ जाएंगे। और इस जीवा के दो कार्य है, एक है बोलना, तो हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रवचन कथा ये बोल सकते हैं, और दूसरा है महत्व इम्पोर्टेंट काम जीवा का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो और दूसरा कार्य क्या है कि हम प्रसाद ग्रहण करते खाते हैं, तो हमें सिर्फ प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। तो थोड़ा हम जो भगवान है ना, उनकी थोड़ी महानता के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद हम उनको कैसे भोग लगाना चाहिए, फिर प्रसाद की क्या महिमा है, कैसे हम सभी पापों से मुक्त होते हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जो है भगवद्गीता 14.4 में बताते हैं कि अहम बीज प्रजापिता। तो 84 लक्ष योनि में जितने भी जीव है वो उन सब के कौन है, पिता कौन है, भगवान श्री कृष्ण। और प्रभुपद समझाते हैं कि जो वैज्ञानिक है आज के साइंटिस्ट, वो बताते हैं कि सब कुछ प्रकृति से पैदा होता है, सब कुछ क्या करते हैं, प्रकृति हमें प्रदान करती है। तो इसका खंडन प्रभुपद इस तरह करते हैं, बोलते हैं अगर कोई सिर्फ अपनी माता को जानता है, अगर कोई सिर्फ अपनी माता को जानता है और बोलता है कि मैं अपनी माता से ही मेरा जन्म हुआ है और पिता के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो उसका ज्ञान परिपूर्ण है नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि हम सबको पता है कि पिता के बिना कोई भी स्त्री पुत्र नहीं हो सकता। तो इस तरह ये जो भौतिक वैज्ञानिक को प्रकृति मतलब स्त्री है ना, तो प्रकृति स्त्री है मतलब कोई तो पुरुष होना चाहिए। तो भगवद्गीता में भागवत में बताया है कि भगवान श्री कृष्ण अपना सिर्फ एक दृष्टिपात करते हैं इस भौतिक प्रकृति पे, तो सभी 33 कोटि जीवों का क्या होता है, जन्म होता है। तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है कि भगवान श्री कृष्ण हम सबके क्या है, पिता है। अगर हम समझो किसी व्यक्ति को पूछेंगे आपके पिता का नाम क्या है, तो फिर उसके पिता का नाम क्या है, फिर उसके पिता का नाम क्या है, ऐसा भी करते जाएंगे, सबसे आखिरी में हमको कौन मिलेगा, भगवान श्री कृष्ण ही मिलेंगे। तो इन दो बातों से पता चलता है कि सबके पिता कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। अभी दूसरे गुरु के बारे में हम सोचेंगे, भगवान श्री कृष्ण जो है ना सभी के गुरु है ना। तो सबसे जो अभी हमारा जो परंपरा है ब्रह्म मध्व गौड़ी वैष्णव परंपरा, इसमें जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो सबसे मूल है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा से ही ये परंपरा आगे आता है। तो ब्रह्मा सबके गुरु है, हमारे नारद जी भी, उन्होंने व्यासदेव जी से नारद जी ने ज्ञान प्राप्त किया, फिर नारद जी ने ब्रह्मा से ज्ञान प्राप्त किया। और ब्रह्मा को किसने ज्ञान दिया? आध्यात्मिक ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया। तो सबके गुरु कौन है? ब्रह्मा ही है, सॉरी कृष्ण ही है, भगवान श्री कृष्ण ही है। तो और हम ये जो भगवद्गीता अभी सुन रहे हैं तो ये भगवद्गीता में भी हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है इससे। तो ये भी भगवद्गीता की भगवान श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं ना अर्जुन को। तो जो अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से। तो भगवान श्री कृष्ण कौन है? सबके गुरु है। अभी भगवान श्री कृष्ण जितने भी देवता है, 33 कोटि देवता, ब्रह्मा है, शिव जी है, इंद्र है, चंद्र है, तो उन सब देवताओं के भी देव है ना। ब्रह्मा और शिव जी, 33 कोटि देवता, सब देवों के देव है। तो भागवतम में ऐसा आता है कि ब्रह्मा जी जो है ना, अनेक जब सृष्टि निर्माण करने का समय आता है तो ब्रह्मा जी के त्वचा से भृगु ऋषि का जन्म होता है, मन से मरीचि ऋषि का जन्म होता है, कान से पुलस्य मुनि का जन्म होता है, नाभि से पुलह, फिर अंगूठे से प्रजापति दक्ष का जन्म होता है, और मन जो हमारा मन है वहाँ से मरीचि ऋषि, फिर हमारा जो प्राण है वहाँ से वशिष्ठ मुनि का जन्म। तो इस तरह अनेक ऋषि मुनि ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं, फिर उन ऋषि मुनियों के फिर विवाह होता है, आगे फिर हम सब आते हैं, फिर ब्रह्मा जी के जो स्तन है वहाँ से धर्मराज का जन्म होता है, फिर मनु आते हैं ब्रह्मा से, तो मनुष्य, फिर मनुष्य आते हैं मनुष्य। तो इस तरह फिर हमारा सृष्टि आगे होता है। लेकिन ब्रह्मा कहाँ से आते हैं? ब्रह्मा का जन्म कैसे हुआ है? गर्भोदक्षय विष्णु के नाभि से कमल आया, फिर कमल की डंडी पे ब्रह्मा जन्म हुआ उनका। फिर गर्भोदक्षय विष्णु के बारे में हम जो चर्चा करते थे, वो कहाँ से आए? वो महाविष्णु से आए। तो महाविष्णु जब एक श्वास छोड़ते हैं तो ऐसे अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं बाहर, तो एक ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षय विष्णु होता है ना। तो गर्भोदक्षय विष्णु कहाँ से आए? महाविष्णु से। और पीछे जाएंगे तो महाविष्णु कहाँ से आए? सबसे आखिरी में कौन आता है? भगवान कृष्ण ही आते हैं। तो इस तरह सभी देवों के देव कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो उनके समान ना तो कोई है, ना ही उनके ऊपर कोई है। तो जब ये धृतराष्ट्र ने पूछा इसको, संजय को, कि जब ये युद्ध चल रहा था ना महाभारत का, तो पूछा कि भगवान कृष्ण कितने बलवान है, ऐसा पूछा संजय को। तो संजय ने बताया धृतराष्ट्र को, अभी जितने भी इस पृथ्वी पर राजा है ना, उनका सबका बल अगर एकत्रित किया जाए और उसके साथ फिर पृथ्वी के जितने भी राजा है ये इधर एकत्रित हुए, तो उन सबका बल अगर एकत्रित किया जाए और एक तरफ भगवान श्री कृष्ण का बल एकत्र किया जाए तो भी भगवान श्री कृष्ण उनसे बलवान है, उनके समान कोई है नहीं। और फिर धृतराष्ट्र ने पूछा कि फिर कितने बलवान है, कितना पट, मतलब 10 पट 20 पट कितना, पृथ्वी के जितने भी राजा है ना उनसे कृष्ण कितने बलवान है, मतलब ऐसा मल्टीप्लाइड बाय रहता है ना 10 पट, जैसे कि भीम की शक्ति की तुलना जब किया जाता था तो क्या बोला जाता था, उनके अंदर 10,000 हाथी का बल था और जरासंध के पास भी 10,000 हाथी का, तो ऐसा नापा जाता है ना, उस तरह भगवान को कैसे नापा जाएगा ऐसा पूछा। तो उसने बोला कि भगवान श्री कृष्ण को ऐसा नापा बिपा नहीं जाता बोला तो भगवान सिर्फ अभी मन में जब इच्छा करते हैं ना तो पूरा सृष्टि का विनाश कर सकते, सिर्फ मन में इच्छा करने से पूरे राजा महाराजा ये ब्रह्मांड, तो उनकी इच्छा से सब कुछ चलता है। तो भगवान श्री कृष्ण इतने बलवान है कि उनके बल की कोई तुलना नहीं है, सभी देवों के देव है, सभी गुरुओं के गुरु है और सबके पिता भी है, अहम बीज प्रजापिता। तो ऐसे भगवान जो है ना, और भी भगवान का एक शक्ति है जिसको अचिंत्य शक्ति बोला जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि अपना विस्तार कर सकते हैं। तो ये भी भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है। मतलब जैसे कि आप इधर बैठे हो, आप इधर ही हो ना एक जगह पे, घर में नहीं हो सकते, तो एक ही आपका विस्तार हो सकता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हर जगह पे हर समय रह सकते हैं, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान श्री कृष्ण क्या करते। जब विवाह का समय आता भगवान श्री कृष्ण के, तो भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 जो 100 रानियों के साथ अलग अलग मंडपों पे जब विवाह किया, तो भगवान ने खुद का एक ही समय विवाह किया और खुद का विस्तार किया। और भगवान श्री कृष्ण मतलब आपको थोड़ा ये होगा कि भगवान ऐसा कितना विस्तार कर सकते है ना। तो मतलब जब ये सत्या नाम की एक भगवान श्री कृष्ण की रानी थी ना, तो उनके जो पिता ने स्वयंवर रचा था, तो उधर 7 प्रकार के बहुत वो टाइम पे बहुत बलिष्ठ बैल रहते थे, तो उनके साथ युद्ध करना है, उसको हराना है, एक साथ उनके नाक में व्यसन डालना है और फिर सत्या का विवाह होगा। तो सभी राजा महाराजा आए थे उधर विवाह के लिए, और फिर देखा गया कि कोई भी उनको एक साथ नियंत्रित नहीं कर सकता, अनेक राजा ये करे। लेकिन कृष्ण जब आए तो उन्होंने क्या किया, खुद का विस्तार किया 7 रूपों में, और हर एक बैल के साथ एक अलग कृष्ण लड़ रहे थे, वो पकड़े और उनको फिर बाद में उनको नियंत्रित किया और सत्य के विवाह किया। तो कितने खुद के विस्तार कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी चर्चा किया कि भीम के पास 10,000 हाथी का बल था, तो भगवान श्री कृष्ण कितने खुद के विस्तार कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे बैठे हो तो आप एक ही हो ना, दो नहीं, तो भगवान ऐसा कितने विस्तार कर सकते हैं खुद के, 1,00,000 2,00,000। तो गीता में भागवत में बताया है कि जितने भी जीव है 84 लक्ष योनि में हर एक ब्रह्मांड में, तो हर जीव के साथ परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण क्या करते, खुद का विस्तार करते हैं। तो आपके हृदय में है कृष्ण परमात्मा स्वरूप में, आपके हृदय में भी है, सबके हृदय में है ना। तो कितना हो गया, वो संख्या कितना है, और ऐसा बोला जाएगा कि पृथ्वी के अंदर जितने भी धूल के कण हैं, हर कण कण में भगवान श्री कृष्ण है परमात्मा रूप, उनकी शक्ति है। तो हम जब भगवान श्री कृष्ण को हम अकेले जब सेवा करते हैं अर्चा विग्रह का, तो हम सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारा सेवा देख रहे हैं कि नहीं, मैं तो कर रहा हूँ है कि नहीं, तो पता नहीं अर्चा विग्रह में भगवान है क्या नहीं है ना। अरे अर्चा विग्रह में तो भगवान है, लेकिन आपके हृदय में भी है ना, और कण कण में भगवान है, तो उनसे जो है ना हम कुछ छुपा सकते हैं नहीं। कोई किसी अंधेरी रात में भी कोई पाप कर्म करता होगा और सोचता होगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो सभी देवता साक्षी है भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में हर जगह पे है ना। तो कैसे कोई ऐसा कार्य कर सकता है पापी कर्म, तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना साक्षी है। बहुत लोग बोलते हैं कि अर्चा विग्रह में भगवान है क्या, आपका जो मंदिर है वहाँ पे राधा वृंदावन बिहारी है, तो इधर तो जब अनु हर पृथ्वी के हर कण में भगवान है, तो क्यों अर्चा विग्रह में नहीं हो सकते। तो जब हमारे जो गुरु है, जब भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हैं आप अर्चा विग्रह में आ जाओ इधर है ना, मंत्रों के द्वारा मंत्र उच्चारण करके बोलते हैं, तो उसको एक विधि बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठापना। तो भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की प्रतिष्ठापना हो गई। तो शुद्ध भक्त जब बोलते हैं, बुलाते हैं भगवान को इस विग्रह में आ जाओ, तो भगवान विग्रह में आ जाते हैं उधर। और फिर वो जो जिस वस्तु से वो विग्रह बना है, जैसे लकड़ी से बना होगा, पत्थर से बना होगा, तो जो लकड़ी पत्थर है क्या वो अभी नहीं, वो अभी साक्षात भगवान है। इसको प्रभुपाद ऐसा समझाते हैं जैसे कि नोट कागज से बनता है ना, एक समझो 2,000 का नोट है, तो अगर कोई कागज लेता है और उसको उसका क्या वैल्यू है कागज का, समझो 1 रुपया होगा उतना कागज का, कि वैल्यू कितना होगा, 2 रुपया होगा। लेकिन जब उसके ऊपर भारत का सिक्का पड़ता है नोट का, गांधी जी का, तो उसका वैल्यू बढ़ता है ना 2,000 का। उसी तरह जब अर्चा विग्रह में हमारे जो परंपरा के जो शुद्ध भक्त है ना, उसका प्रतिष्ठापना करते हैं, तो वो भगवान उधर आ जाते हैं। अभी वो लकड़ी पत्थर नहीं है, वो साक्षात कौन है? ब्रजेंद्र नंदन है, कृष्ण है। तो फिर अभी हम जब प्रेम पूर्वक कोई वस्तु भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं तो भगवान क्या करते हैं? उसका स्वीकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता के श्लोक में पत्रम पुष्पम फलम तोयम इस श्लोक में बताते हैं कि अगर कोई प्रेम से कोई मेरा भक्त मुझे कुछ अर्पित करता है तो क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण? प्रेम से उसे ग्रहण करते हैं। अभी जो भागवतम में दशम स्कंद में जो सुदामा ब्राह्मण की कथा आती है ना, तो सुदामा ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण को क्या लेके गए थे? पोहे, चिवड़ा, पोहे का चिवड़ा। और जब गए वो द्वारका में, भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार से उनका स्वागत किया, उनका चरणों का अभिषेक किया। जिस पलंग पे वो और रुक्मिणी माता बैठते थे उस पलंग पे उधर बिठाया, और ब्राह्मण सुदामा की अनेक प्रकार से जब सेवा की तो भगवान श्री कृष्ण को वो जो पोहा चिवड़ा लाया था घर से वो देने को संकोच कर रहे थे सुदामा ब्राह्मण, कि उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण का उधर भोजन किया सुदामा ने, तो 56 भोग का भोजन किया था उधर सुदामा ने, अनेक प्रकार के उधर रसमय पदार्थ खाए थे उधर। और उनका जो अभी द्वारका में क्या ऐश्वर्य होगा इसका हम तो अंदाजा नहीं लगा सकते कैसा। तो उस ऐश्वर्य में बैठ के जब वो 56 भोग भगवान श्री कृष्ण खिला रहे थे उनको खाए, तो वो सब देख के इनका जो एक मुट्ठी भर चिवड़ा था इधर फटी हुई धोती में इधर बांध के लाए थे वो, तो संकोच कर रहे थे कि कैसा दे उनको हम भगवान को, भगवान इतना हमको 56 भोग खिला रहे हैं और इनका इतना ऐश्वर्य है, तो वो नहीं दे रहे थे। उनको लग रहा था कि ये थर्ड क्लास है, मतलब ये मेरा चिवड़ा जो है ना वो देने लायक नहीं है। तो फिर भगवान अभी तो हमने चर्चा किया कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूपत हर एक के हृदय में है ना, तो सिर्फ इतना ही नहीं भगवान अंतर्यामी भी है। भगवान श्री कृष्ण जो है ना, हमने चर्चा किया कि एक अचिंत्य शक्ति है जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण अपना खुद का विस्तार कर सकते हैं, है ना, अनेक रूपों में। लेकिन उससे भी आगे भगवान श्री कृष्ण क्या है? अंतर्यामी है। अंतर्यामी मतलब भगवान श्री कृष्ण आपके मन में क्या चल रहा है वो भी जानते हैं। ये कैसा शक्ति है देखो, कि भगवान श्री कृष्ण के पास ऐसा शक्ति है कि अभी आप आपके दिमाग में क्या विचार चल रहा है ना ये भी जानते हैं। मतलब जैसे कि सुदामा के चल रहा था उनके दिमाग में कि ये पोहा तो लायक नहीं है भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए, तो भगवान श्री अभी वो धोती में ऐसा छिपाया था उन्होंने एक मुट्ठी भर पोहा कि वो किसी को ना दिखे, जो धोती रहता है ना उसमें ऐसा छिपाया था, तो दिखता नहीं था ऊपर से ऐसा पोहा, अंदर था। लेकिन भगवान तो परमात्मा अंतर्यामी है ना, तो उनको तो पता था ये नहीं दे रहा करके तो भगवान ने बोला कि मेरे लिए तुम क्या लाए हो, दे दो। तो नहीं दिखा रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने वो धोती खोल के छीन के लिया पोहा और फिर खाने लगे भगवान श्री कृष्ण। प्रेम के साथ लाया था, सच्चा भक्त था ब्राह्मण, है ना। तो प्रेम से एक मुट्ठी जब चावल खाए भगवान श्री कृष्ण ने, अभी दूसरा मुट्ठी खा रहे थे तो रुक्मिणी माता आके हाथ पकड़ लिया, बोली एक मुट्ठी चावल आपने खाया है ना, इसके लिए मुझे जो रुक्मिणी माता लक्ष्मी है ना साक्षात, तो एक जन्म और अगले कुछ जन्म के लिए मुझे सेवा करने के लिए एक मुट्ठी चावल पर्याप्त है, अगर दूसरा मुट्ठी खाओगे तो पता नहीं मुझे कितने जन्म उसका सेवा करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए उन्होंने पकड़ लिया मुट्ठी को और बोली कि अभी हमारे लिए भी कुछ रखो, है ना, आप ही सब खाओ खा रहे हो तो हमारे लिए कुछ है कि नहीं, तो कितनी रानियां हैं, तो फिर हमारे लिए कुछ रखो करके मुट्ठी पकड़ लिया। और फिर एक मुट्ठी जो पोहे चिवड़ा खाया था भगवान ने, तो बाद में सुदामा तो शुद्ध भक्त थे, उन्होंने कुछ मांगा नहीं भगवान श्री कृष्ण से, ऐसे ही निकल गए पटी धोती लेके अपना, कुछ भी लिया नहीं उधर से। सोच रही थी कि अच्छा होगा भगवान ने कुछ दिया नहीं, मेरी पत्नी ने तो बहुत समझा के भेजा था ये मांगो वो मांगो लिस्ट, लेकिन मैं उन्होंने मांगा क्या कुछ? कुछ भी नहीं मांगा, शुद्ध भक्त था। तो जाते वक्त तो सोच रहा था कि अच्छा हुआ भगवान ने कुछ मुझे दिया नहीं, अगर देते तो मैं अहंकारी बन जाता और माया में फंस जाता। बहुत से ऐसे भक्त होते हैं, अगर उनके पास लक्ष्मी ज़्यादा आती है तो बिगड़ जाते हैं, है ना। अब जब ठीक है, अभी जब थोड़ा बहुत पैसा जैसा है, जैसा भगवान है तो ठीक है, हम रास्ते पे रहते, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा पैसा आता है तो क्या होता है, जैसे नल कुबेर और मणिग्रीव भागवत में कथा आता है ना, कुबेर के पुत्र थे, जैसे उनके पास बहुत लक्ष्मी थी ना तो बिगड़ गए। तो हमारे पास भी हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लक्ष्मी आने के बाद हम क्या करते हैं, बिगड़ सकते हैं। इसलिए सुदामा ने सोचा कि अच्छा हुआ भगवान ने नहीं दिया, तो उनको तो सब पता है ज़्यादा मेरे पास लक्ष्मी आ जाती तो मैं क्या हो जाता, माया की सेवा करता, बिगड़ जाता। ऐसा करके वो सोच के आ ही रहे थे, तो जब घर में आया तो देखा तो आपको सब पता है उसका जो झोपड़ी था वो ऐसा महल बन गया था जो स्वर्ग में इंद्र का भी महल नहीं था ऐसा। तो ऐसा महल, इतनी सारी उधर स्त्रियाँ सेवा कर रही थी, उनकी पत्नी तो मतलब कैसी वो कपड़े में थी, साड़ी में, वो उसको समझ में ही नहीं आ रहा था ये मेरा पत्नी है घर के। तो इस तरह भगवान अगर थोड़ा एक मुट्ठी चिवड़ा के बदले में इतना ऐश्वर्य किसको प्रदान किया, सुदामा को प्रदान किया। भागवत में गजेंद्र का कथा आता है, तो गजेंद्र को जब मगर ने पैर पकड़ लिया और कई दिनों तक उनका युद्ध चलता रहा, और गजेंद्र जो पृथ्वी के ऊपर धरती के ऊपर का है ना जीव, और मगर पानी के अंदर का है, तो बाद में उनका शक्ति क्षीण होने लगी। तो पहले जन्म में ये जो गजेंद्र थे तो इंद्रदुम्न महाराज थे ना, तो भक्त थे। तो जब ऐसा समय आया तो भगवान ने याद दिलाया, परमात्मा हर एक के हृदय में होते हैं ना, तो पिछले जन्म का याद श्लोक याद आए। फिर भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करने लगे श्लोकों के द्वारा गजेंद्र, और उधर का ही सुंड से कमल का फूल उठाया, और जब भगवान को देखा उन्होंने गरुड़ के ऊपर भगवान आ रहे मेरे रक्षा करने के लिए, जैसे ही भगवान को देखा तो अपने सुंड से एक कमल का फूल उठाया और भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया। पुष्पम पत्रम पुष्पम, जब भगवान बोलते कि पुष्प मुझे अर्पण करो प्रेम से, तो मैं क्या हो जाऊँगा, प्रसन्न हो जाऊँगा। तो पुष्प उठा के अर्पण किया और भगवान आए, तो जब आए तो पहले जो मगर था तो उसको काटा और उनका मुक्ति किया, तो दोनों जो है ना मुक्त हो गए। एक मगर जो तो मगरी था तो ग्रह, तो वो भी मुक्त हुआ, और ये गजेंद्र था ना उसका भी उद्धार होगा। गजेंद्र चतुर्भुज रूप में उसको शरीर प्राप्त हुआ, फिर गरुड़ पे बिठा के भगवान देखे गए। तो सिर्फ उन्होंने क्या किया था, ये भगवान श्री कृष्ण को प्रेम से एक फूल अर्पण किया था, फूल पत्रम पुष्पम, पुष्प अर्पण किया था। तो भगवान श्री कृष्ण प्रेम से उस पुष्प को स्वीकार किया, फिर उसका उद्धार किया। और वो जो गजेंद्र था ना, गजेंद्र के पहले भगवान श्री कृष्ण ने वो जो ग्रह था मगर था तो उसका भी उद्धार किया। तो उस जो ऐसा गीता में भागवत में बोला गया है कि जो भगवान के हाथ से जो कोई भी मरता है, भले पूतना रहे दो कोई भी हो, जो भगवान के हाथ से जो कोई उसका मृत्यु आता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है ना। तो सब आचार्य लोग टीका करते हैं कि ठीक है, गजेंद्र तो पिछले जन्म में इंद्रदुम्न महाराज थे, उन्होंने बहुत सारी साधना की थी तो उसका भगवान आए उसका उद्धार किया, ये जो मगर था उसने तो कुछ भी नहीं किया था ना, उसका उद्धार कैसे हो गया, वो तो मगर थी ना, तो उसका कैसे उद्धार होगा, ऐसा पूछते प्रश्न। तो आचार्य लोग इसका जवाब ऐसे देते थे कि गजेंद्र एक शुद्ध भक्त था, गजेंद्र इंद्रदुम्न महाराज थे ना, तो इन्होंने उनके चरण ऐसे घट पकड़ते थे छोड़ा ही नहीं है ना। तो हमें इससे क्या सीखना चाहिए कि जैसे कि मगर ने इंद्रदुम्न महाराज के शुद्ध भक्त थे, उनके चरण ऐसे पकड़े थे छोड़ा ही नहीं, तो इस तरह हमें भी क्या करना चाहिए, हमारे जो गुरु महाराज है, हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु है, तो उनके चरण ऐसे पकड़ना चाहिए छोड़ना ही नहीं, चरण पकड़ना मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इस तरह दोनों का उद्धार हो गया, और गजेंद्र ने क्या ऑफर किया था, सिर्फ एक फूल। फिर इसका कथा आता है द्रौपदी का महाभारत में, कि जब उनके ऊपर ये प्रसंग आया था कि दुर्वासा मुनि आए थे 10,000 शिष्यों के साथ, और दुर्योधन ने सब उनका भर के उनका दिमाग में सब ये करके भेजा था कि कैसा भी करो कि पांडवों को शाप दे दो, है ना। तो उधर जाके दुर्वासा मुनि ने प्रसाद मांगा खाने के लिए, दे दो बोला कुछ हम, और शिष्य कितने थे 10,000 और वो भी वन में। तो वो जब अभी द्रौपदी के पास जो अक्षय पात्र था, जो बटली थी, तो वो तो जब द्रौपदी प्रसाद लेती थी उसके बाद उसमें अन्न निकलता नहीं था। तो वन में भी युधिष्ठिर महाराज जितने भी ऋषि मुनि थे ना, सबको प्रसाद खिलाते थे, है ना, सबको वन में ऋषि मुनियों को प्रसाद सबको खिलाने के बाद फिर खुद पांडव लोग लेते थे प्रसाद, फिर सबसे आखिरी में कौन प्रसाद लेता था, द्रौपदी। और द्रौपदी प्रसाद लेने के बाद ये आए दुर्वासा मुनि 10,000 और आके मांग रहे खाना दो। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला ठीक है, अभी खाना तो इधर है ही नहीं, उनको पता है, आप जरा नहा धो के आ जाओ, देखते हैं। और फिर ये जो दुर्वासा मुनि और 10,000 शिष्य जब तक नहाने गए, तो अभी द्रौपदी संकट में पड़ गई ना, तो फिर क्या किया द्रौपदी ने, हाँ, भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया। अब जो भक्त स्मरण करता है तो भगवान आ गए उधर द्रौपदी के पास। आने के बाद द्रौपदी को बोले कि मुझे पहले भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो, है ना। अभी द्रौपदी बोले इधर संकट में मैं हूँ, हमारे पास प्रसाद नहीं, इसलिए आपको बुलाया है, और आप बोलते कि आपको मस्करी करने का पड़ा है ना। फिर भगवान बोल रहे कि है तुम्हारे पास कुछ ना कुछ, है ना, ऐसा मस्करी करते भगवान करते। द्रौपदी बोली कुछ नहीं है, नहीं नहीं ऐसा करके फिर तुम, वो बोले कि वो बटली लेके आओ तुम्हारी अक्षय पात्र। द्रौपदी जाके दिखा रही, देखो इसमें क्या है क्या। अक्षय पात्र जब द्रौपदी ने दिखाया भगवान श्री कृष्ण को, तो जो प्रसाद एक पत्ता उधर साग का पत्ता एक था उधर, तो जब भगवान ने बोला कि ये साग का पत्ता है ना पूरा जगत को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है, है ना। तो ऐसा करके भगवान ने वो अपना प्रसाद का जो है ना मुंह में डाल दिया और बोला कि जो यज्ञ के भोक्ता है वो इस साग के पत्ते से प्रसन्न हो जाए। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने वो पत्ता खाया, तो इधर जो दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्य, उनका क्या हो गया, पेट भर गया और एकदम तृप्त हो गए। और बाद में युधिष्ठिर महाराज भीम को बोले गदा लेके जाओ, बुलाओ अभी। भीम जब गदा लेके गया तो उनको लगा कि अब ये भीम जो है ना, अगर हम नहीं खाएंगे तो गदा से मारे। तो इससे अच्छा है कि हम भाग जाते। तो 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा मुनि उधर से ही भाग गए। तो अगर भगवान चाहते तो अनेक तरह से मदद कर सकते थे, वो तो भगवान है कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने किया क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि मैं एक पत्रम, पत्रम पुष्पम, पुष्प का भी हमने एक चर्चा किया ना, गजेंद्र ने एक पुष्प ऑफर किया और इधर द्रौपदी ने एक पत्ता ऑफर किया, तो भगवान प्रसन्न हो गए। जब भगवान प्रसन्न होते हैं ना हमारे से, हमारी सेवा से, तो बहुत से चमत्कार होते हैं। जैसे पांडवों जब युद्ध जीत लिए और युधिष्ठिर महाराज ने राजस्व यज्ञ किया, तो राजस्व यज्ञ मतलब बहुत बड़ा यज्ञ होता है राजस्व यज्ञ, तो उस यज्ञ में जो है ना बहुत पैसा लगता है, पूरे पृथ्वी के जितने भी राजा है उनको हराना पड़ता है, घोड़ा छोड़ना पड़ता है। और जब यज्ञ हो गया तो यज्ञ में पहले एक अग्र पूजा का मान होता है, अग्र पूजा का, तो जो भी पूरा उस सभा में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है ना उसकी पूजा करना होता है। तो अनेक लोग बोल रहे थे कि व्यासदेव श्रेष्ठ है, कोई बोल रहा था कि ये श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ है, तो फाइनली सबसे सहदेव ने घोषणा की भगवान श्री कृष्ण की पूजा होना चाहिए, क्योंकि वो कौन है, सबके पिता है, गुरुओं के गुरु है, सभी देवों के देव है, ऐसा करके सहदेव ने घोषणा किया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों की फिर पूजा हो गई उधर अनेक प्रकार से। तो सभी राजा देवता उधर, ब्रह्मा भी, ऐसा बोला जाता है कि उधर ब्रह्मा भी आए थे, शिव जी भी आए थे, सभी देवता आए थे उधर, सभी ऋषि मुनि थे उधर, सबने सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति करके किसकी पूजा की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। जब इंद्र थे ना, जब उन्होंने अपराध किया और गोवर्धन पर्वत उठा के भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोवर्धनवासी की रक्षा की, तो ऐसा बोला जाता है कि इंद्र ने भी भगवान श्री कृष्ण की बहुत अच्छी तरह से पूजा की थी। और उनकी जो माता थी आदिति, तो उन्होंने बोला था कि जो गजेंद्र उनका जो ऐरावत हाथी है ना, वो उनका सोंड बहुत बड़ा होता है, तो सोंड से उन्होंने आकाशगंगा का जल लाया था और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था और अनेक प्रकार से उनकी पूजा की थी। और देवता लोग जो थे ना, तो वो भी उधर थे, गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, ऋषि मुनि अनेक प्रकार के मंत्र गा रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण फिर प्रसन्न हो गए। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं ना भगवान श्री कृष्ण हमारी सेवा से, तो इधर देवता लोग प्रसन्न कर रहे हैं, ऋषि मुनि है, सब जब प्रसन्न करते हैं भगवान श्री कृष्ण को, तो ऐसा बोला जाता है कि जो पर्वत होते हैं ना, पर्वतों से रत्न निकलते हैं बाहर खुद ब खुद जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ से जनरली फल आते हैं ना, भागवतों में ये वर्णन है, तो फल के जब जगह मधु टपकता है पेड़ से, क्योंकि क्या हो गया, भगवान प्रसन्न हो गए। और किसान जब खेती में धान बोया जाता है ना, तो बिना बोए ही धान निकल रहा था, जैसे गेहूं ज्वारी होता है ना, वो बिना बोए ही निकलता है ना। नदियों में रस बहता है, जो नदियाँ होती है ना, जो पानी बहता है ना, लेकिन वो टाइम पे रस बहने लगा, ऐसा भागवत में वर्णन आता है। ऐसा सब मिरेकल क्यों हुआ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे सबकी एकत्रित सेवा जब हम करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जब प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो कुछ भी मिरेकल हो जाता है। तो इस तरह हमें क्या प्रयास करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो ये जो अर्चा विग्रह है ना, ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, तो हमें रोज इनको भोग लगा के हमें प्रसाद खाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण का जो अर्चा विग्रह है, हमारे सबके घर में अल्टर मंदिर स्थापन करना चाहिए, और अगर मूर्ति नहीं तो कम से कम उन चित्र जो है ना उधर रख के, भगवान श्री कृष्ण को जो विधि है, उस विधि से जब हम जो भी हमारे घर में हम बनाते हैं ना, उसका हर एक जो आइटम बनाया है उसमें तुलसी पत्र डाल के जब हम भगवान श्री कृष्ण को घंटी बजा के प्रसाद भोग लगाते हैं ना, तो बाद में जब भोग निकालते हैं हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के घंटी बजा के, तो वो सब क्या बनता है, प्रसाद यज्ञशिष्ट बन जाता है। यज्ञशिष्ट सिन संतो, तो यज्ञशिष्ट जब बन जाता है, जो प्रसाद जो बन कोई खाता है ना, तो सभी प्रकार से पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा इस श्लोक में बताया है। यज्ञशिष्ट सिन संतो मुच्यन्ते सर्व किलबिषण, सभी प्रकार के शाप सभी प्रकार के कष्ट इससे मुक्त हो जाता है। तो ये जब हमारे जो श्रील प्रभुपाद है ना, जब अमेरिका में न्यूयॉर्क में गए थे प्रचार करने के लिए, तो उधर बहुत से हिप्पी मिले श्रील प्रभुपाद को। तो अभी प्रभुपाद ने जब गए अमेरिका, तो सोचा था कि उधर जाके प्रचार करेंगे, और देखा तो वो इतने माया में है, तो इतने भक्ति के जो सिद्धांत है बड़े बड़े, तो उनको कैसे समझ में आएंगे, इतने कितने बुद्धिमान लोगों को भी ये भक्ति के सिद्धांत समझ में नहीं आते। और ये जो हिप्पी थे ना, वो क्या खाते थे, मांस मटन मछली ऐसा सब खाते थे, ऐसे लोगों को ये सिद्धांत क्या समझ में आएंगे। सिद्धांत कलयुग में ऐसा बोला गया कि सब क्षुद्र है, तो भक्ति के इतने बड़े सिद्धांत हमको समझ में आते आएंगे, नहीं आएंगे ना। तो उधर श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, खुद श्रील प्रभुपाद प्रसाद बनाते थे, भगवान को भोग लगाते थे, और इन हिप्पियों को खिलाते थे खुद के हाथ से। अभी श्रील प्रभुपाद क्या है, शुद्ध भक्त है ना, और शुद्ध भक्त खुद क्या कर रहा है, खुद प्रसाद बना रहा है और खुद भगवान को ऑफर कर रहा है, और खुद मतलब खुद भी सेवा कर रहा है ना प्रसाद देने का, मतलब अभी वो क्या हो गया, महा हो गया ना। शुद्ध भक्त के हाथ से जब हम प्रसाद प्राप्त करते तो क्या हो जाता है, महा होता है ना। और खुद प्रभुपाद सर्विंग भी कर रहे, तो जैसे ही ये हिप्पी लोग खाए प्रसाद, रोज आते थे खाते थे, तो कुछ दिनों के बाद उनका क्या छूट गया, सब मांस मटन मछली सब ये खाते थे ना, वो सब आदतें गंदी आदतें छूट गई। और जैसे जैसे प्रभुपाद से सुनने लगे, वो कीर्तन करने लगे, ऐसे जो लोग जो है ना, जिनकी प्रवृत्ति आसुरी है, जो सिद्धांत को भी नहीं समझ सकते ना, तो गीता भागवत का समझ सकते हैं, ऐसे लोग भी जब प्रसाद खाए उधर, तो वो भी क्या बन गए, अभी शुद्ध भक्त बन गए, न कि सिर्फ पाप। इधर तो लिखा है कि सिर्फ पापों से व्यक्ति मुक्त होते हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अभी शुद्ध भक्त बन गए, और उनको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम भी प्राप्त हो गया है ना हिप्पी लोगों को, और उनको शायद वो गोलोक धाम भी जाएंगे कुछ साधना करने के बाद। तो इतना सब परिवर्तन किससे कैसे हो गया, सिर्फ प्रसाद खाने से हो गया है ना। तो एक बार प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे, तो एक व्यक्ति ने बोला, प्रभुपाद ऐसा बोल रहे थे कि हमको प्रसाद पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, उसके बाद ही हमें खाना चाहिए ऐसा, इसके ऊपर जोर दे रहे थे प्रभुपाद। तो एक व्यक्ति बोला कि भगवान तो जो है ना भोग भोग स्वीकार करते नहीं, मतलब प्रसाद खाते नहीं, और आप बोल रहे कि प्रसाद भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने उसको मुंह तोड़ उत्तर दिया। श्रील प्रभुपाद बोले उसको कि आप बोल रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण प्रसाद ग्रहण नहीं करते, और भगवद्गीता में क्या बोला गया है पत्रम पुष्पम श्लोक में, अगर प्रेम से हम भगवान श्री कृष्ण को कुछ अर्पण करते हैं तो भगवान बोलते हैं मैं उसको प्रेम से स्वीकार करता हूँ। तो भगवद्गीता में तो भगवान ने बोला है कि मैं प्रेम से स्वीकार करता हूँ, आप बोलते हो भगवान स्वीकार नहीं करते, तो आप जैसे दुष्ट का मैं सुनू क्या? भगवद्गीता में जो लिखा है वो सुनो भगवान की वाणी, है ना? ऐसा प्रभुपाद ने उसको बोला प्रवचन में उस भक्त को, क्योंकि वो बोल रहा था कि भगवान तो कुछ लेते नहीं, प्रसाद स्वीकार करते नहीं, तो आप कैसे बोल रहे कि उनको भोग लगाना चाहिए, प्रसाद ऑफर करना चाहिए। तो इस तरह प्रभुपाद ने उसका खंडन किया। अब ये जो कृष्ण प्रसाद है ना, तो ये इतना इफेक्टिव रहता है, महत्वपूर्ण, जो पापी से पापी व्यक्ति भी अगर प्रसाद ग्रहण करता है ना, तो वो भी सभी पापों से सभी कष्टों से मुक्त होता है। तो जैसे कि एक संसर्गजन्य रोग होता है ना, किसी संसर्गजन्य रोग कैसा होता है कि अगर किसी को रोग हो गया है ना और प्लेट में उसके कुछ बचा है, अगर वो कोई खाता है दूसरा व्यक्ति, तो उसको भी वो रोग लग जाता है संसर्गजन्य। पहले जमाने में कुछ ऐसे रोग थे कि उसको क्या बोलते थे, संक्रमित रोग, नहीं तो संसर्गजन्य रोग ऐसा बोलते ना, तो वो झूठन अगर कोई दूसरा खाता है तो उसको भी वो रोग लग जाता है। तो प्रभुपाद ये समझाते हैं कि ये जो भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद है ना, ये संसर्गजन्य रोग जैसा है। अगर भगवान को किसी शुद्ध भक्त ने उसको भोग लगाया है और वो क्या बन गया, फिर अभी प्रसाद बन गया, अगर गलती से भी हम उसको खाते हैं, तो फिर वो जो रोग है ना भक्ति का, वो हमको भी लग जाता है। तो इस तरह ये जो प्रसाद है ना, ये संसर्गजन्य रोग के बराबर है। तो ये जो संतगण होते हैं ना भक्त, वो प्रसाद के लिए बहुत लालायित रहते हैं। तो एक बार अद्वैत आचार्य है ना, चैतन्य चरितामृत में इस तरह वर्णन आता है कि एक बार चैतन्य देव श्री अद्वैत आचार्य के घर में प्रसाद ले रहे थे, और जब प्रसाद लेते तो कुछ बचता है ना उसको भगवान चैतन्य देव जो प्रसाद, तो जो शिष्ट बचता है, यज्ञ शिष्ट मतलब जूटन बचता है ना, तो वो खाने के लिए बाकी भक्त लोग जो है इतना फाइटिंग कर रहे थे, जो ऐसा दिखने में बहुत ही मतलब शिष्ट लोग दिख रहे थे, जो सगले बाकी भक्त पार्षद जो थे ना चैतन्य महाप्रभु के, तो ऐसे लोग भी एक बच्चे के जैसा झगड़ा करके वो प्रसाद बांट कर ले रहे थे, तो इतना लालियत रहते थे, तो सब टूट पड़े उस पत्तल के ऊपर। चैतन्य प्रभु उठने के बाद सब भक्त क्या करे, उधर मुझे चाहिए करके झगड़ा करने से, मतलब जो भक्त के जो झूठन होती है ना, वो प्राप्त करने के लिए भक्तगण जो है ना लालायित होते हैं उसे प्राप्त करने के लिए। क्यों? ये संसर्गजन्य रोग है ना, अगर हमको मिलेगा तो फिर हमको उदार हो जाएगा भक्ति वजह, सब कष्टों से हम मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह ये प्रसाद की महिमा है। तो ऐसा भागवत में एक वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा जो है ना अपनी ही पुत्री के साथ संभोग करने के लिए जब उद्यत थे, तो मरीचि के एक 6 पुत्र थे, तो उन्होंने देखा तो वो हंस रहे थे ब्रह्मा को देख के, तो हंसने से उनको इतना अपराध हुआ, तो तुरंत वो पशु होने में उनका जन्म हो गया। किसका? मरीचि के 6 पुत्र थे। तो जब ये असुर योनि में उनका जन्म हुआ, तो अनेक जन्मों के बाद में देवकी के पुत्र में इनका जन्म हुआ कृष्ण, तो 8वें है ना, 7वें बलराम जी है, तो उसके जो पहले 6 थे तो ये मरीचि के पुत्र थे। तो ये बाद में हमको पता है कि कंस ने फिर एक एक करके वध किया ना उधर जेल में। तो ये बाद में सूतल लोक में बलि महाराज है ना, सूतल लोक में उधर एक बच्चे के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, और जब ये बाद में कंस का वध हो गया, भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव जी से जब मिले, तो देवकी कृष्ण को बोली कि मुझे वो पुत्र चाहिए मेरे 6, है ना, कैसा भी कर, क्योंकि उनको पता था कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। तो देवकी हट करने लगी कि मुझे वो पुत्र चाहिए। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान गए सीधा किधर है उनको अंतरे में, उनको तो सब पता है। तो सुतलोक में गए, उधर थे वो छे पुत्र। तो उनको लेके आए द्वारका में भगवान। और देवकी तो वो वात्सल्य प्रेम था ना देवकी के अंदर। तो देवकी ने जब पुत्र को देखा तो लगत उनके स्तन से दूध निकल गया। और ये छः के छः पुत्र थे, देवकी का दूध पिया उधर द्वारिका में। और जैसे ही वो दूध पिया देवकी का, तो वो सभी प्रकार उनको शाप मिला था ना, तो शाप और कष्ट से वो मुक्त हो गए। छः के छः पुत्र सभी कलमश से, सभी पापों से, सभी कष्टों से, शाप से वो छः के छः पुत्र मुक्त हुए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देवकी का स्तन का दूध संपान किसने किया था? भगवान श्री कृष्ण किया था। और जिसको भगवान श्री कृष्ण के ओट लगे हैं तो वो तो प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद इनको मिला, महा मिला उनको भगवान श्री कृष्ण का। तो इस तरह देवकी के जो छः के छः पुत्र थे, तो वो सभी शाप से, कष्टों से, पापों से मुक्त होके अपने स्वर्ग में चले गए। तो ऐसा बोला जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के जो ओट है ना, उसमें दो प्रकार के गुण होते हैं। एक तो जब भगवान श्री कृष्ण उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं ना, तो उस जो भोग में है ना, तो जो उसका जो प्रसाद का जो ये रहता है ना, वो बहुत मधुर हो जाता है टेस्ट उसका, और सुगंध भी आ जाता है उसका। ये दो गुण है भगवान श्री कृष्ण के ओठों से। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी है ना, भक्तों के साथ ऐसा बैठे थे, और उनका एक गोविंद करके एक सेवक है जो हमेशा चैतन्य देव की सेवा करता है। तो एक बार वो गोविंद जगन्नाथ जी के मंदिर में गया था, और उनको बहुत सारा प्रसाद मिला जगन्नाथ जी का, और वो लेके आए इधर चैतन्य देव के पास, चैतन्य महाप्रभु के पास। और चैतन्य महाप्रभु ऐसे भक्तों के साथ बैठे थे, और जैसे ही प्रसाद प्राप्त हुआ चैतन्य महाप्रभु को, तो चैतन्य महाप्रभु को सब भक्तों को प्रसाद वितरित किया चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा गोल बिठा के। और जैसे ही प्रसाद चखे सब भक्त लोग, तो उसमें वो जो मधुरता थी प्रसाद की, वो बहुत थी, मतलब उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो सब भक्त अचंभित हो गए कि इतना मधुर कैसा है इसका टेस्ट है ना प्रसाद का। तो चैतन्य देव ने बोला कि भगवान श्री कृष्ण को जब भोग चढ़ाया जाता है ना, तो वो भगवान श्री कृष्ण के ओठों का स्पर्श होता है उसको। और भगवान श्री कृष्ण के ओठों से अभी हमने चर्चा की दो गुण है, तो वो क्या है, उसका सुगंध बढ़ जाता है, हैं, और उसमें मधुरता बढ़ती है। तो जिस वस्तु से जो प्रसाद बनता है, जैसे कि समझो घी से बना होगा, दूध से बना होगा, गेहूं से बना होगा प्रसाद, ये तो भौतिक वस्तु है ना, उनका टेस्ट तो हमको पता है कैसा है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को जो भोग चढ़ता है ना प्रसाद का, तो उसका जो मधुरता है ना कई गुना बढ़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के ओठों का उसको स्पर्श हो जाता है ना। तो इस तरह चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है ना, विषयैर अन्न खाइले मलिन होए मन, मलिन मन है ले नहि कृष्ण रे स्मरण। कोई विषय व्यक्ति है ना, तो अगर उसके घर में प्रसाद खाएंगे हम, तो हमारा मन कैसा होता है? मलिन होता है। और मलिन अगर हमारा मन हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण का हमें स्मरण नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो होते हैं ना, दो ही बातों से डरते हैं, एक वैष्णव अपराध से, और दूसरा कहीं हमें भगवान का स्मरण हम भूल न जाए भगवान श्री कृष्ण को। अगर विषय अन्न हम खाएंगे, तो हो सकता है कि हम भगवान श्री कृष्ण को भूल जाए, है ना। जब चैतन्य महाप्रभु एक आया और नित्यानंद प्रभु एक ऐसे सन्यासी से मिले जो विषय था, मतलब स्त्री संगी था और शराब भी पीता था, तो उसके घर में जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु गए उधर, तो उसने प्रसाद ऑफर किया था चैतन्य महाप्रभु को खाने के लिए भोजन। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उधर भोजन ग्रहण नहीं किया, उधर सिर्फ उन्होंने कुछ फल दूध ऐसा स्वीकार किया। तो फल और दूध ये जो ऐसी वस्तु है ना, जब कोई विषय वस्तु भी ये बनाता है, तो उसमें उसकी चेतना नहीं जाती। लेकिन बाकी जो पदार्थ होते हैं, जैसे चपाती है, भात है, भाजी है, उसमें अगर विषय व्यक्ति, मतलब जो माया की सेवा करने वाला व्यक्ति अगर प्रसाद बनाता है, तो बनाने वाले की चेतना किस में जाती है? प्रसाद में जाती है। और फिर हमारा मन क्या होता है? मलिन हो जाता है। और मलिन मन है ले नोहे कृष्ण रे स्मरण। अगर विषय हम खाएंगे अन्न, तो हमारा फिर कृष्ण का स्मरण हमें नहीं होगा। तो इस तरह अनेक प्रकार की कथा है प्रसाद के बारे में। प्रसाद खाने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है और सभी प्रकार के शाप, कष्ट और इतना ही भगवान श्री कृष्ण का प्रेम भक्ति प्राप्त करके गोलोक धाम भी जा सकता है। तो इस तरह हमें हमारे जी जीवा के दो कार्य है ना, तो उसे हमें प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेद गौर भक्तवृंद की जय।
हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान लक्ष्मण प्राण प्रभु। प्रभु जी ने हमें बहुत ही अच्छी तरह से महाप्रसाद की महिमा बताई, तो प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोलते हुए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अभी श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का महाआरती होगा, उसमें हमें डांसिंग कीर्तन करते हुए भाग लेना है। हरे कृष्णा में डांस करने का भी एक सीधा साधा तरीका है कि हाथ जब भी प्रभु जी गाएंगे उस समय हम हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना करेंगे, और जब भी हम गाएंगे उस समय हम हाथ ऊपर कर और एक पैर आगे एक पैर पीछे इस प्रकार डांस करते हुए भगवान का नाम स्मरण करेंगे, भगवान का नाम का गायन करेंगे। तो सभी जन कीर्तन में डांसिंग कीर्तन करते हुए भाग ले सकते हैं। हरे कृष्णा।